ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार ने राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। लोक निर्माण विभाग ने स्टील स्लैग आधारित तेजी से गड्ढे भरने की आधुनिक तकनीक इकोफिक्स का दिल्ली सचिवालय मार्ग पर ट्रायल किया। और आईपीएल क्रिकेट T20 में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हराया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपस्थित रहीं।
आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवार के लोगों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। इस अवसर पर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 6,50,000 से अधिक पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित 36 लाख अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के निवासी देश भर में अब 30,000 से ज्यादा सूचीबद्ध अस्पतालों में इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने घोषणा की कि इस महीने की 10 तारीख से आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण शुरू हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना जो वर्ष 2018 को शुरू की गई थी, इसने सिर्फ 5 वर्षों में देश भर के गरीब परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान की है, जिससे उन्हें चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान भारी स्वास्थ्य व्यय का बोझ नहीं उठाना पड़ा है। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में मैरीटाइम अवेयरनेस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
युवा शक्ति महाशक्ति, और आज एक मैरीटाइम नेशन होने के नाते हम लोगों ने महसूस की है हमें अलग अलग वर्टिकल पे कितना काम करनी है। अगर दुनिया की सबसे शक्तिशाली मैरीटाइम नेशन के हिसाब से अपना पहचान बनाना है तो निश्चित रूप से आज की युवा को विशेष भूमिका पालन करना होगा।
श्री सोनोवाल ने कहा कि कई सदियों के शानदार इतिहास के साथ भारत का समुद्री क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास का स्मरण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने राष्ट्र निर्माण में समुद्री क्षेत्र की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार भारत की प्रगति के लिए समुद्री क्षेत्र और बंदरगाहों को सुदृढ़ करना जारी रखेगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत करने पर राज्य सरकार के मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रासंगिक, सटीक और समय पर आंकड़े तैयार करने के महत्व को उजागर करना है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। इस स्मार्ट बूथ पर यात्रियों को EFIR दाखिल करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा उड़ान की जानकारी और यात्रा मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने कहा कि ये बूथ आज से संचालित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग अवधारणाओं के विजन के अनुरूप है।
इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग कंसेप्ट का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें दो इंटरैक्टिव कियोस्क लगे हुए हैं जिससे कोई भी पैसेंजर कोई भी इंफॉर्मेशन सिटीजन सर्विसेज ऑब्टेन कर सकता है और यूजर फ्रेंडली है। इसका कनेक्शन साथ में अंदर के बूथ पे भी रहता है और किसी भी तरह की लॉस्ट रिपोर्ट EFIR जनरेट करना या मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करना या फिर MB थेफ्ट रिपोर्ट करने का भी कार्य इस बूथ से किया जा सकता है।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में आज वस्तु और सेवा कर GST के 7 वर्ष हितधारकों के अनुभव और आगे का मार्ग विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में व्यापारियों, MSME, उद्योग प्रतिनिधियों और कर विशेषज्ञों सहित GST से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में दिल्ली के प्रमुख व्यापारी संगठनों के नेता भी मौजूद रहे। सम्मेलन का आयोजन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और दिल्ली GST प्रोफेशनल्स ग्रुप ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन का उद्घाटन कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य पिछले 7 वर्षों में GST की यात्रा पर विचार करना और इसके लागू होने से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करना था। इस अवसर पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने GST की उपलब्धियों पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार और GST परिषद लगातार इसके सरलीकरण का काम कर रही है।
7 वर्ष देश में GST को लगे हो गए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार और GST काउंसिल GST को सिंप्लीफाई और रेशनलाइज करने में जुटी हुई है। अगर ऐसा ना होता तो 7 साल में 1400 से ज्यादा अमेंडमेंट GST में ना होते। इसका मतलब है कि सरकार फ्लेक्सिबल है।
लोक निर्माण विभाग ने आज स्टील स्लैग आधारित तेजी से गड्ढे भरने की आधुनिक तकनीक इकोफिक्स का ट्रायल दिल्ली सचिवालय मार्ग पर किया। इस दौरान PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि राजधानी की जनता को बेहतर, सुरक्षित और गड्ढा मुक्त सड़कें देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इकोफिक्स का ट्रायल सफल रहा और इस तकनीक से बारिश का मौसम आने से पहले सड़कों की समयबद्ध और व्यापक रूप से मरम्मत करने में सहायता मिलेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि शहर की 2 करोड़ जनता की उम्मीदों को पूरा करना उनकी सर्वोच्च जिम्मेदारी है। श्री गुप्ता ने एक सम्मान समारोह के दौरान कहा कि विधानसभा में जनता की समस्याओं पर चर्चा हो और उनके समाधान निकले उसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि दिल्ली विधानसभा के पिछले सत्र में 28 घंटे बहस चली जिसमें जनता की कई समस्याओं का समाधान हुआ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि सादगी से सरकार चलने का दावा करने वाले श्री केजरीवाल ने मार्च 2015 से दिसंबर 2022 के बीच अपने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित पुराने सरकारी बंगले के सामान्य टूट फूट, सीवर और बिजली से जुड़े कार्यों पर लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च किए। दिल्ली में आज मीडिया से बातचीत में श्री सचदेवा ने कहा कि एक RTI के जवाब में मिली जानकारी से पता चलता है कि एक सरकारी बंगले पर लगभग 3.69 करोड़ रुपए का वार्षिक रखरखाव खर्च हुआ। ये दिखाता है कि श्री केजरीवाल आम आदमी होने का दावा कर किस तरह का राजसी जीवन जीते थे।
PWD डिपार्टमेंट बताता है कि अरविंद केजरीवाल के 2015 से 2022 के सरकारी बंगले का मेंटेनेंस रखरखाव उसका खर्चा 29,56,35,074 रुपए है, मतलब 31 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए रोज। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा उस बंगले में क्या था जिसकी मेंटेनेंस में आपको 1 लाख रुपए रोज खर्च करना पड़ता था। और ये वो खर्चा है जो शीश महल से अलग है, उसमें जो 50-54 करोड़ का घोटाला हुआ वो अलग है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार ने राज्य में फिल्म सिटी विकसित करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि फिल्म उद्योग और कलाकारों को सहयोग करने के लिए ये 2 चरणों में विकसित की जाएगी। उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 2 दिन के फिल्म महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पहले चरण में पंचकुला जिले के पिंजौर में 100 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके लिए जमीन की पहचान कर ली गई है और परियोजना के लिए सलाहकार की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में गुरुग्राम में फिल्म सिटी विकसित होगी। इसके लिए भूमि पहचान की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से संबंधित मितकों पर कहा कि वक्फ अधिनियम 1995 के लागू होने से पहले और अधिनियम के अंतर्गत वक्फ के रूप में पंजीकृत कोई भी संपत्ति हटाई नहीं जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है तो वह स्थायी रूप से रहती है। विधेयक केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए नियमों को स्पष्ट करता है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे लेकिन वे बहुमत नहीं बनाएंगे। कोई व्यक्तिगत भूमि अधिकृत नहीं की जाएगी और ये विधेयक केवल उन संपत्तियों पर लागू होता है जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। केवल स्वैच्छिक और कानूनी रूप से वक्फ के रूप में समर्पित संपत्तियां ही नए नियमों के दायरे में आती हैं। विधेयक जिला कलेक्टर के पद से ऊपर के अधिकारी को ये समीक्षा करने और सत्यापित करने का अधिकार देता है कि क्या किसी सरकारी संपत्ति को गलत तरीके से वक्फ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन ये वैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार नहीं देता। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन छात्रों के लिए एक मानकीकृत समकक्षता ढांचा स्थापित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने विदेशों में शिक्षा पूरी की है और जो भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली या कार्यबल में समाहित होना चाहते हैं। एक रिपोर्ट।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा कि आयोग ने स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों से विदेशी योग्यता की पहचान के लिए एक पारदर्शी प्रौद्योगिकी प्रेरित तंत्र विकसित किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष ममिदाला जगदीश कुमार ने कहा कि ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य में बदलना है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना है तो भारत को विदेशों में अर्जित डिग्रियों की उचित पहचान सुनिश्चित करनी चाहिए। श्री कुमार ने कहा, इस महत्वपूर्ण सुधार के माध्यम से भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार बनाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया है। रहीसुद्दीन रिहान की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भगवान राम की जयंती का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की महाकाव्य जीवन यात्रा सभी को सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में आज प्रोजेक्ट सक्षम के तीसरे चरण का समापन समारोह वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। ये परियोजना नेक मिशन फाउंडेशन के अंतर्गत संचालित की गई जो दिल्ली विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी के एलुमनी द्वारा संचालित एक स्वप्रेरित पहल है। दिल्ली विश्वविद्यालय की डीन प्रोफेसर अंजू वली टिक्कू ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह को संबोधित किया। प्रोजेक्ट की प्रबंध निदेशक सुश्री परमेश्वरी धायल और कार्यकारी निदेशक दिनेश चंद्र मीणा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। राजधानी में आज दिन में तेज धूप खिली रही। आज का अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। आईपीएल T20 क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने आज मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने राहुल के 77 रन की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में चेन्नई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन ही बना सकी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा दिल्ली सरकार ने राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में मैरिटाइम अवेयरनेस वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। और आईपीएल क्रिकेट T20 में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 25 रन से हराया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।